नियमसार कारण कार्य नियम पुस्तक पहिले लेक्चर नंबर 14 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् नमिऊणजिनम् वीरम् अनन्तवर्णानदं सणसहावम् वोच्छामि नियमसारम् केवली सुध केवली वणिदम् श्री कुंदकुंदाचार्य रचित यह नियमसार नामक ग्रंथ है और उस पर पद्म प्रभु मलधारी देव की जो टीका है तात्पर्य वृत्ति उसका नाम है। इस पर गुरुदेव कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं अब इन पुस्तकों का नाम है कारण कार्य नियम। उसका भी हम पहली पुस्तक पढ़ रहे हैं और पृष्ठ संख्या 95 पर हम आ गए 95। आज अभी हम 12वें नंबर का श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। 5वीं गाथा पूरी हुई उसकी टीका के बाद ये श्लोक लिखा है पढ़ेंगे।
भव भय भेदिनी भगवती भवतः किं भक्तिरत्र न शमस्ति तर्हि भवां बुद्धि मध्य ग्राह मुखांतर्गतो भवसि।
उसका अर्थ देखते हैं। भवना भय ने भेदनारा भव भय भेदिनी भव ने संसार जो जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण है उसके भय को नाश करने वाला आ भगवान प्रत्यक्ष तने भक्ति नथी। कौन भगवान? महावीर के शांतिनाथ स्वयं स्वयं आ करके प्रत्यक्ष विराजमान है उसकी बात कर रहे। शू तने भक्ति नथी भक्ति ने उसकी कुछ पूजा नहीं करना है आरती लेकर उतारने नहीं उसको। तो तू भव समुद्रनी मध्यमा रहेला मगर ना मुखमा छे। यदि तुझे उसका भय नहीं है और अपने भगवान आत्मा के प्रति भक्ति श्रद्धा नहीं है तो कहते कि तू समुद्र के बीच में भव समुद्र के बीच में मगर के मुंह में है। किसी मगर ने तुझे मुंह खोल के पकड़ लिया है तो अभी तू मरने वाला ही है ऐसे यहाँ समझ ले। अब उसका प्रवचन हम देखते हैं 95 पेज। अरे भवने भय भवना भय ने भेदनारा आ भगवान जो निश्चय थी भगवान पोतानो छे एनु भान छे एमा आवा भगवान होय छे ने एम कहे छे। भक्ति होय छे व्यवहार श्रद्धा कहो के भक्ति कहो आत्मानो निश्चय अनुभव संकित कहो के निश्चय भक्ति कहो समझाणु काई जो ने भक्ति शब्द वापर्यो छे ने भक्ति शब्द वापर्यो छे एटले के भक्ति व्यवहार संकित छे ने। देखो यहाँ व्यवहार की भी बात उठाई ना उन्होंने किसको जो निश्चय है उसके साथ होता है उसको व्यवहार होता है। व्यवहार वो भेद करके और फिर वो निश्चय भी और व्यवहार भी उसकी बात चल रही थी अपनी यहाँ व्यवहार की बात उठाई इसलिए वो तो बाह्य भगवान को भी उसके साथ ले लेना ये कह रहे। हाँ पृष्ठ संख्या 96 पर आए अभी हम
पहली लाइन
एटले भक्ति व्यवहार संकित है ना। किसको किसको व्यवहार संकित कहा? हाँ जिसके निश्चय से समय दर्शन प्रकट है उसके व्यवहार से देव गुरु शास्त्र की जो भक्ति है उसको यहाँ कहा। तीर्थंकर देव त्रिलोकनाथ आगम आदि नी श्रद्धा आदि में किसको लेना हमने देखा था आप्त आगम और तत्व दूसरी भाषा में उसको देव गुरु शास्त्र भी कहते हैं क्योंकि तत्वों का विवेचन तो शास्त्र में आता है। आप्त आगम तत्व कहो या देवगुरु शास्त्र कहो एक ही बात है। વ્યવહાર સંકિત વિકલ્પ છે એ વ્યવહાર ભક્તિ છે. નિશ્ચયથી આત્માના સ્વરૂપમાં અનુભવની પ્રતીતની ભક્તિ, ઉસકો ભક્તિ કહા. અનુભવ કી ઓર પ્રતીત કી શ્રદ્ધાન જો હૈ નિશ્ચય સમય દર્શન જો હમને દેખા થા જીવાસ્થિ કાયમ એસે જો ઉત્પન્ન હુઆ હૈ તો ઉસકો યે નિશ્ચય ભક્તિ કહેતે હૈ. સુજાનમલજી બહુ ભારે વાતુ ભાઈ, આહા હા. સુજાનમલજી યાદ આ ગયે ક્યાં? હા સુજાનમલજી મોદી મારવાડી થે. હા બહુ એસે ઠીંગણી ઇતને સે છે, 80-85 વર્ષ કી ઉમર થી. और यहाँ वो कामदार के वहाँ या वहाँ उनके प्रवचन होते थे. ऊपर बोलना बोलते थे तो नीचे ग्राउंड में भी सुनाई देता हमेशा कहते तू मौत ना मोड जई रही हो छे. क्या आवाज बुलंद थी उनकी, ऐसे दिखने में तो ऐसे इतने दुबले पतले छोटे से थे. हाँ બાબુભાઈ કી ભી પર્સનાલિટી ક્યાં થી, એકદમ તેજક પુંજ. દેખો એની પ્રભુતામાં પહોંચાડો એને, એને અંદર પહોંચાડવામાં કહે છે કે વ્યવહાર વિકલ્પથી જ્ઞાન એને થાય છે. આ વસ્તુ અંતર અખંડ પરિપૂર્ણ છે એની શ્રદ્ધાનું સંકિત નિશ્ચય વ્યવહાર એને બતાવે છે. ક્યાં કહેતે હૈ વ્યવહાર નિશ્ચય કો બતાને વાલા હોતા હૈ. બસ સમજાણું કાંઈ બતાવે માટે વ્યવહાર લાભદાયક છે એમ નથી. ફિર ઉસકો લાભદાયક હૈ એસા કોઈ માનતે તો કે માન્યતા જૂઠી હો જાયગી. આજ બધા વાંદા ઉઠે છે ને, શાસ્ત્રમાં વ્યવહારની વાતો ઘણી આવે, ભેદ પાડ્યા વિના સમજાવવાનો કોઈ ઉપાય છે નહીં. પરમાત્મા ભેદને શી રીતે સમજાવી શકે? સમયસારની 9-10મી ગાથા. ભવના ભયને ભેદનાર, બધા ભ ભ છે. ભવના ભય એ સ્વામીજી કો આદત થી એક હી શબ્દ છે, ધ સે બહુ બહુ બડા બહુ ઓર જ્યાદા થે ઓર હમને ડાયરેક્ટ ઉનકે મુંહ સે સુને હુઆ હૈ. વો ધક્તિ ધુની વગેરે ક્યા ક્યા ડાલતે થે ઉસમે. ચોરાશીના ઉતારા એનો જે ભય એને ભેદનારા એવા આ ભગવાન, યહાં પર ભી ભ લિયા. એના પ્રત્યે શું તને ભક્તિ નથી? વો ભી ભ આયા. તેના પ્રત્યે તને પ્રેમ નથી તો તું ભવસમુદ્રની મધ્યમાં, ભવસમુદ્રની મધ્યમાં હા મોટો સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર હોય એના એમાં મધ્યમાં માછલું પડ્યું હોય. માછલાને તો વાંધો ન આવે કહે છે, લ્યો ને માણસ પડ્યો હોય કે ઢોર પડ્યો હોય તેને નીકળવું ક્યાં? મછલી તો ઉસમે તૈર સકતી હૈ, બાકી ઉસમે સે કોણ તૈર સકેગા? અબ મનુષ્ય તો વહાં નહીં પડેગા, પણ એ જો કલ્પના કર રહે સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્રમાં વહાં કોઈ મનુષ્ય નહીં હોતે. તો એને નીકળવું ક્યાં? એમ 84ના અવતાર ક્યાંય કાંઠો ન મળે, ક્યાંય અંત ન મળે એવા અનંત ભવજળરૂપી સમુદ્ર એનામાંથી નીકળવા, ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ અને ભક્તિ તને નથી તો ભવસમુદ્રની મધ્યમાં રહેલા મગરના મુખમાં છે. પાછો એમ, પાછો એકલો છૂટો પણ નહીં. ક્યાં કહે ખાલી વો ભવસમુદ્ર કે બીજ સમુદ્ર મેં ગિરા હૈ યા પડા હૈ એસા નહીં કહેતે. વો મગર કે મુખ મેં પડા હૈ, મધ્યમાં રહેલો મગરમચ્છ એના મુખમાં. મિથ્યાત્વરૂપી મોટો મગરમચ્છ છે ને, ભગવાનની જેને ભક્તિ નથી એને આત્માની ભક્તિ નથી. આત્મા અખંડ પરિપૂર્ણ પ્રભુ એની જેને શ્રદ્ધા છે એને આવા પરમાત્માની શ્રદ્ધા હોય એમ કીધું. અને એની જો શ્રદ્ધા નથી તો તને આત્માની પણ શ્રદ્ધા નથી. ઓહો ક્યાં કહેતે કોઈ કહેતે નહીં તો હમ તો આત્મામાં લીન હૈ, બાહ્ય ભગવાન કી જરૂરત હી નહીં હૈ, ઉસકી ભક્તિ વગેરે કે હમકો પરિણામ હી નહીં આતા હૈ. તો કહેતે કે તુજે આત્મા કી ભી ભક્તિ નહીં, એ કહે રહે. વો તો નિશ્ચય કો બતાને વાલા યે કહા ના, પહેલે હી બતા દિયા. ભવજળના સમુદ્રના મધ્યમાં રહેલા મગરના મુખમાં છો. હા હા, સમજાણું કાંઈ. મગરમચ્છ ઓલો અજગર છે, પેલી બાઈ ઓલા ભાવમાં, આ ભાવમાં વિશલ્યા. પહેલાંના ભાવમાં ચક્રવર્તીની દીકરી હતી, નામ ભૂલી ગયા. ચક્રવર્તીની દીકરી હતી ને પછી એને કોઈ વિદ્યાધર લઈ ગયો, જંગલમાં નાખી દીધી. ક્યાં નામ થા ઉસકા? અનંતમતી કે અનંતમતી ને? હા, જંગલમાં કોઈ ન મળે. માલુમ હૈ સ્ટોરી વો? ચક્રવર્તી કી પુત્રી થી કિસી વિદ્યાધર કા મન આયા ઉસકે ઉપર, તો ઉસકો એને ઉઠા કે લે ગયા. પીછે પડા હોગા કોઈ તો ઉસને બીચ જંગલ મેં ઉસકો ઉપર સે છોડ દિયા. તો અહીં કિતને 6000 વર્ષ કુછ રહી ના વહાં, એસા કુછ આતા હૈ. ઓર ફિર કિસી કો પતા ચલા, રાજા કો પતા ચલા, તો ચક્રવર્તી વહાં, ચક્રવર્તી બતાયે ના, હા, ઉસકો ઢૂંઢતે ઢૂંઢતે આયા દૂર સે. પણ ઉસ એને ઉતરે મેં ક્યાં હુઆ કે બહોત બડે અજગર ને ઉસકો પકડ લિયા. ને આધી તો અંદર ચલી ગઈ ઓર અભી વો આધે વો ખાને કે ઇસમે. તો ઉસને એસા સંકલ્પ કર લિયા કે અભી મેં યે, હા, એને ઉસને સલેખના જૈસે લિયા કે અભી ઇસ એરિયા કે બહાર નહીં જાઉંગે યા જો કુછ કે. તો ઉસકો મારને ક્યો આયે પિતાજી? તો કહેતે અભી મારો મત, એસે ભી મેને યે સલેખના વ્રત અંગીકાર કર્યા, મેં યહાં સે કહીં નહીં જાઉંગી, બચુંગી તો ભી, અભી ઉસકો મારના મત કરકે. તો વો મરકર વિશલ્યા હોઈ થી દૂસરે ભાવ મેં, જો રામ લક્ષ્મણ કે સમય કી બાત હૈ વો, જબ વો લક્ષ્મણ મૂર્છિત હુએ થે ના, તો ઉનકે લિયે વો ઠીક કરને કે લિયે ઉસકો લે આયે થે. ક્યોંકિ વિશલ્યા કી એસી થી કે વો ઉસકા સ્નાન કા પાણી હૈ જો યહાં સે એસી જાતી ભી થી તો સારે જખમ અચ્છે હો જાતે થે. તો વહાં ઉસકો લે આયે થે વિશલ્યા. એને એવું તો શુભભાવ કે ફલ મેં તો, ક્યોંકિ મિથ્યા તો મેં મરી હે યે તો નક્કી હૈ ના, ક્યો બોલો? સ્ત્રી મેં, હા, સ્ત્રી મેં ઉત્પન્ન હુઈ ના વિશલ્યા તરીકે, હા. નહોતી ના પહેલા બોમાં, એને ઉસને દેખો મિથ્યા મિથ્યાત્વ મેં ઉસને વ્રત અંગીકાર કિયે, જો કોઈ સલેખના ધારણ કિયે, શુભ ભાવ થા વો, વહી તો જો કુછ હૈ. તો ફિર દુબારા ઉસકો મનુષ્ય પર્યાય મિલી, સ્ત્રી પર્યાય મિલી. ઇસલિયે મેને કહા કે વો તો સમય સમય નહીં મરી થી. હા, દેખો કર્મભૂમિ કી થી ને, કર્મભૂમિ મેં ઉત્પન્ન હુઈ, ઉસકા અર્થ ક્યા હૈ? મિથ્યાત્વ કે સાથ આઈ હૈ યે વો કહે રહે. પુરુષ હોકર જન્મે થે તો ભી વો કર્મભૂમિ મેં જન્મ લિયા ઉસને, દૂસરા મનુષ્ય મેં સે મનુષ્ય મેં તો મિથ્યા દૃષ્ટિ થી. દેખો નામ ભૂલી ગયા ચક્ર, વો તો હો ગયા. જંગલમાં નાખી દીધી, જંગલમાં કોઈ ન મળે, એમાં મગરમચ્છ, મગરમચ્છ શું અજગર, અજગર એમાં એનો ચક્રવર્તી બાપ ગોતતા ગોતતા આવ્યો. અજગરને મારવા બાણ ઉપાડ્યું, ફાડીને કાઢ્યું. કન્યા કહે, પિતાજી મેં તો આહાર ન લેવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, બાણ નીકળી તો પણ નભવાની નથી, અજગરને ન મારો. સમજાણું કાંઈ? પિતાજી આહારનો મારે ત્યાગ છે, એને ન મારો. અડધું અજગર ગળી ગયો હતો અને અડધું બહાર હતું, દેહ છૂટી ગયો, ગળી ગયો. લ્યો વિશલ્યા આવે છે ને, લક્ષ્મણને જ્યારે બાણ વાગ્યું હતું રાવણની વિદ્યાથી મૂર્છા આવી ગઈ, મૂર્છા. રામચંદ્રજી અટવાઈ ગયા. પુરુષોત્તમ પુરુષ, ધર્માત્મા, મોક્ષગામી એ છેલ્લો દેહ પરમાત્મા થવાના, એ પણ એકવાર હજી રાજ હતું ને. આમ લક્ષ્મણને જોઈને અરે આ સવાર સુધીમાં શું થશે આનું, કોઈએ રાગ ચાહીએ ને, પણ એકવાર હજી રાગ હતું ને, રાગ રાગ આ સવાર સુધીમાં શું થશે આનું, કોઈએ કહ્યું કે સવાર પહેલાં નહીં જાગે તો ખલાસ, આહા હા. કોઈકે કહ્યું કે વિશલ્યા એક બાઈ છે, એનું સ્નાન કરીને એનું પાણી છાંટો, એવી બાઈ સતી છે, પુણ્યવંત છે. ક્યાં છે? તો કહે ભરતના રાજમાં. કહો ભરતને, એના બાપને દીકરીને મોકલે, એ જ્યાં આવે છે ત્યાં આ થાય છે કે નહીં? નિમિત્તથી અહીંયા થવાનું હતું એમાં આ નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. ખ્યાલ હોય ને? એ તો નિમિત્ત પરી દ્રષ્ટિ જાતી ને લોકો, ઘેરે ઉસકે કારણ હુઆ. અહીંયા થવાનું હતું એમાં આ નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. રામચંદ્રજી અને લક્ષ્મણજી, મોટી સેના, કરોડો માણસો, કંઈક ઘાયલ થયેલા, જ્યાં કહે છે ત્યાં શું કહેવાય? તંબુ, મોટા તંબુ હતા, મહા મોટા પુરુષો છે, દેવના પૂજનીક પુરુષ, જ્યાં અંદર આવીને પાણી છાંટે ત્યાં જાગૃત થઈ જાય છે. હા હા, જુઓ આ જગતની વિચિત્રતા. એવો દાખલો આપ્યો છે ને ક્યાંક, અધ્યાત્મ પંચસંગ્રહ છે ને ત્યાં આપ્યો છે. વિશલ્યાએ જ્યાં આમ કર્યું, આત્માને સમય દર્શન અને જ્ઞાનના પાણી છાંટ્યા તો જાગૃત થઈ ગયો અંદરથી. ઉસકી કભી મહિમા નહીં આવી. કે સ્વયં મૂર્છિત હૈ ઓર સમ્યક દર્શન અને જ્ઞાનના પાણી છાંટ્યા તો જાગૃત થઈ ગયો અંદરથી. ઓર વો કહીં બહાર સે નહીં લાના હૈ, કહાં મિલેગા, ક્યા કરના હૈ. વિશલ્ય કો તો લેને જાના પડા હોગા કિસી કો. યે તો સબ હૈ. અરે હું તો આત્મા પરમાત્મા સમજાણો કાંઈ, પરિણતિ ઉપર વાત કરી છે. પોતાની નિર્મળ પરિણતિ થાય છે ને, જાગે છે જ્યાં, ઓ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, અનંત આનંદનું ધામ એ હું છું. મારામાં શરીર વાણી નહીં, કર્મ ને રાગ પણ નહીં, અલ્પજ્ઞતા પણ નહીં. દેખો મેં જીવ કહેતે હી પુદગલ મેં નહીં હું. તો એ ઔદારિક શરીર, એ તો સ્થૂલ હૈ, એ ભી મેં નહીં હું. કર્મ જો હૈ વો તો સૂક્ષ્મ પુદગલ જો હૈ, દેહ કર્મ, દેહ કારવાણ, દેહ જીસકો કહેંગે, સૂક્ષ્મ પરિણમણ વાલા, વો ભી મેં નહીં હું. તો શરીરમય નહીં તો વર્ણાદિમય નહીં, ઓર કર્મમય નહીં તો કર્મમય ઉદયમય હોને વાલી ચીજે ભી મેં નહીં. એટલે વર્ણાદિ કો ભી નિકાલા ઓર રાગાદિ કો ભી નિકાલા. એ સ્થૂલ દેહ ઓર સૂક્ષ્મ દેહ ઉસ રૂપમય નહીં, મેં પુદગલ રૂપ નહીં હું. ઓર પુદગલ કી વહાં જો કુછ વિશેષતાએ હૈ, શરીર કે જો સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ ઓર કર્મમય રાગાદિ, ઉસ રૂપમય નહીં હું. ઇસ તરહ સે અર્થ લેના ઉસકા. મારામાં શરીર વાણી નહીં, કર્મ અને રાગ પણ નહીં, અલ્પજ્ઞતા પણ નહીં. આપ કહેંગે જ્ઞાન તો અપનારી પડ્યા હૈ ના, વો તો રાગ દ્વેષ જાને દો કર્મ કે ખાતે મેં, ઓર વર્ણાદિ જાને દો જીવ શરીર કે ખાતે મેં. તો યહાં જ્ઞાન તો લિયા ના, અલ્પજ્ઞતા જ્ઞાન તો મેરી પડ્યા હૈ, પરંતુ અલ્પજ્ઞતા પણ નહીં. ક્યો નહીં? ક્યોંકિ અપના સ્વભાવ ક્યાં હૈ? અલ્પજ્ઞતા તો એક સમય કી પર્યાય હૈ, ઓર હમ તો પરી ઉસ સમય ભી, ક્યોંકિ વો અલ્પજ્ઞતા વાલી પર્યાય ભી કહાં સે આઈ? તો સ્વભાવ મેં સે આઈ. ઓર સ્વભાવ કૈસા હૈ? તો સર્વજ્ઞ સ્વભાવ હૈ. ઓર સ્વભાવ કભી નહીં, એસા કભી હોતા હી નહીં, અનાદિ સે હૈ 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 ઓર અનંત કાલ તક રહેગા. ક્યોંકિ પૂરા પૂરા સ્વભાવ ઓર ઉસકી કોઈ ના કોઈ પર્યાય તો રહેતી હૈ ના, તો હર પર્યાય કે પીછે પૂરા પરિપૂર્ણ સ્વભાવ પડા હૈ. યહી કહેતે યહાં અલ્પજ્ઞતા પણ નહીં, એવા સર્વજ્ઞ સ્વભાવી આત્માને પોતાની નિર્મળ પરિણતિ દ્વારા જગાડે છે. એને આત્મા સ્વયં અપને લક્ષ્ય કરકે સ્વયં નિર્મળ પરિણતિ રૂપ પરિણમતા હૈ, તો વહી ઉસકા જગના હૈ. બેહોશી સે હોશ આ ગયા ભી કહેંગે ઉસકો. જાગ્યો એ પોતાનું સ્વરાજ લેવા. લક્ષ્મણ બહારનું રાજ્ય લેવા જાય ગયા. સમજાનો કઈ ભાષા જુઓ ને કેવી છે. હા એ સહી હૈ ને. ભવાં બુદ્ધિ મધ્ય ગ્રાહ મુખાંતર ગતો. ભવાં બુદ્ધિ, અંબુદ્ધિ અને વો સમુદ્ર, મગરમચ્છના મુખમાં છો. ગ્રાહ લિખે ને મહામિથ્યાત્વ રૂપી મગરમચ્છ. હા હા, એને મિથ્યાત્વ ભાવમાં ભવ સમુદ્રમાં બુડવાના છે. સમજાણું કાંઈ. એ પાંચમી ગાથા થઈ. હવે 18 દોષનું વર્ણન. આગળ દોષ કયા ને, સકળ દોષ રહિત એમ કહ્યું હતું. હવે દોષ કયા? આ આપતકા લક્ષણ ક્યાંક બતા થા, સકલ દોષથી રહિત. એસા तो कौन कौन से दोषों से रहित है उसकी बात अभी यहाँ बताएंगे छठी गाथा में। पढ़ेंगे इसको।
चुहतन अभीरु रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजामिच्छु सेदम खेदम मदोरही विम्यनिद्दा जनु वेगो क्षुधा तृष्णा भयम रोषो रागो मोहश्चिंता जरा रुजा मृत्यु स्वेदः खेदो मदोरतिः विस्मय निद्रे जन्मोद्वेगौ। भय रोष राग क्षुधा तृषा मदमो चिंता जन्मने रतिरोग निद्रा स्वेद खेद जरादि दोषढार छे।
ये यहाँ दोष बताए, इन दोषों से रहित अरिहंत भगवान है ऐसी बात बताएंगे। पढ़ेंगे अभी अन्वयार्थ पढ़ते हैं। क्षुधा, क्षुधा का अर्थ क्षुधा, वो तो संस्कृत में भी और हिंदी में भी गुजराती में भी शब्द है। तृष्णा यानी तृषा, प्यास जिसको हम कहते हैं। भयम यानी भय। रोषहा रोष यानी क्रोध। रागहा राग। मोहहा मोह। चिंता जरा यानी बुढ़ापा जरा। रुजा यानी रोग। मृत्यु मृत्यु। स्वेदह स्वेद यानी परसेवो। खेदह खेद। देखो खेद का अर्थ समझते हैं? हाँ? नहीं, थकान होना उसको खेद कहते हैं। हाँ? दुख नहीं, वो तो दुख तो आ गई ना, चिंता वगैरह वो उसमें आ गया। खेद का अर्थ एक्चुअली थकान होता है, बहुत जगह मैंने पढ़ा है। अभी यहाँ क्या करते हैं देखूंगी। मद है ने मद। रति ही रति। विस्मय निद्रे, विस्मय और निद्रा। जन्मोद्वेग, जन्म ने उद्वेग, आ आधार दोष छे। उद्वेग ने अपन त्रस्त हो जाते ना। हाँ वही उद्वेग आकुल। मद आ गए ना, मद आया ना, खेद और मद आया ना। नहीं नहीं घबराहट नहीं होते। नहीं 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 उद्वेग है ना, हमें परेशान हो जाते हैं ना, उद्वेग आए हमको बहुत, उससे त्रस्त हो गए इसके। हाँ बताए श्रुत पिपासा जरा तंक जन्मांत को भय स्मय।
देखो मनीषा बहन यहाँ पर ये बता रहे कि ये 18 दोष है, वो किसी को दोष होते हैं तो भगवान नहीं हो सकते। अन्य मतियों में ऐसी मान्यता है कि भगवान महावीर थक गए थे इसलिए वो लेटे थे, ऐसा कुछ आता है ना, और उन्होंने बोला कि ये गणधर को अभी बाहर भेज देना क्योंकि मेरा अभी ये निर्वाण होने वाला है तो उसको बहुत दुख होगा इसलिए उसको भेज दिया। तो ऐसा विचार जिनेंद्र भगवान करेंगे कि नहीं,
और उनको ऐसा थकान भी नहीं होगी जैसे ऐसा मलूल होके सो गए, ऐसा नहीं होता है।
यानी राग नहीं है, कुछ नहीं होता,
अरिहंत का वो लक्षण नहीं है पसीने के। लोग वो तो मानते ना पसीना आता है वो तो चमत्कार हो रहा है, अमी अमी झरे छे वो भी होता ना, रोग होते ही नहीं उनके, वो होता ही नहीं उनको, रोग है ही नहीं अरिहंत को। असाता वेदनी की उदीर्णा तो छठे में रुक गई, उसके ऊपर कुछ नहीं है, होता ही नहीं है। हाँ जन्म से ही नहीं था निहार, और तीर्थंकर होने के बाद दस्त हो गए, ये कैसी बात है। उनके पिताजी को भी नहीं होता तो माँ बाप को भी नहीं होता है यार। निहार यानी दस्त झाड़ा मलमूत्र वो नहीं होते उनके। ये पता ही नहीं ना अभी ऐसे कुछ ना कुछ अपने मन गढ़ंत बातें करते देते
हैं। देखो भगवान का स्वरूप जब ख्याल में आता है तो हमने भगवान किसको माना है, फिर अपनी बुद्धि चलती है देखो कैसा, अरे मैंने क्या माना था, क्योंकि ये ऐसे 18 दोष से रहित हमारे भगवान है इसका हमें पता ही नहीं है, इसलिए जिसको देखो जय भगवान।
और हमने इसको दोष माना क्या, सुधा नहीं लगती तो क्या करते पहले में पहले, और नींद नहीं आती तो क्या करते, अरे नींद आने के नहीं दोष पैदा होने की दवा करते हैं, नहीं समझे जाने दो ना अभी, उसमें तो सारी प्ररूपना ही खोटी है। देखो यानी हम इसको दोष नहीं समझते हैं, नींद आना अच्छा है, भूख लगना अच्छा है, मानते हैं कि नहीं मानते हुँ? तो हम जिसको अच्छा मानते हैं भगवान पर भी आरोप करेंगे, उनको भी होता है करके हुँ? अरे इतनी क्या बात, बचपन में तो हम गाने गाते थे ना, रोग अच्छा है क्यों स्कूल में जाने से बचाएंगे, सब हमको पूछेंगे थोड़ा। देखो यहाँ टीका पढ़ते हैं, आ 18 दोषना स्वरूपनु कथन छे। एक नंबर सुधा बताए ना, असाता वेदनीय संबंधी तीव्र अथवा मंद क्लेश नी करनारी ते सुधा छे, अर्थात विशिष्ट खास प्रकारना असाता वेदनीय कर्मना निमित्ते थती जे विशिष्ट शरीर अवस्था तेना ऊपर लक्ष्य जाइने। आगे क्या लिखा, मोहनीय कर्मना निमित्ते थतु जे खावानी इच्छा रूप दुख ते क्षुधा छे। देखो कितने कितनी बातें बताई, केवल असाता वेदनीय का उदय है इसलिए वहाँ क्षुधा की वो दुख रूप नहीं परिणति ली, उसके साथ मोहनीय है बताए ना, मोहनीय ना कर्मना निमित्ते थतु जे खावानी इच्छा रूप दुख, खाने की इच्छा रूप दुख वो दुख है वो इच्छा हो रही ना, और इच्छा तो मोहनी की पर्याय यानी मोहनी कर्म के कारण है, चारित्र गुण की विभाव पर्याय है।
यानी अपने जो भगवान होते हैं उनके 12वें गुण स्थान में मोहनी कर्म खत्म होता है, 10वें के अंत में सुबल सूक्ष्म राग खत्म होता है, 12वें में तो कुछ नहीं वितरागी है, और ऐसे को खाने की इच्छा होगी, ये समझ में है ना दलील क्या चल रही है।
और देखो ये जो असाता वेदनीय संबंधी जो तीव्र या मंद जो कुछ बताते हैं उसमें आता है उसकी उदीर्णा या तीव्र उदय या जो कुछ मंद उदय, यानी भूख भी तीव्र और मंद हो सकती है, इसलिए तीव्र मंद दोनों शब्द आ गए यहाँ पर। परंतु ये जो कर्णानियोग के नियम ऐसे है कि इनकी उदीर्णा जो है छठे गुण स्थान तक होती है, उसके ऊपर नहीं है। यहाँ अपना संज्ञाओं का अभ्यास हुआ था ना, तो संज्ञा तो छठे आहार संज्ञा छठे गुण स्थान तक है, ऊपर नहीं है, यानी ऊपर क्षुधा तृषा होती ही नहीं किसी जीव को। देखो दूसरा पॉइंट, असाता वेदनीय संबंधी तीव्रतर यानी वधारे तीव्र मंद अथवा मंदतर पीड़ाती उपजती ते तृषा छे, अर्थात विशिष्ट असाता वेदनीय कर्मना निमित्ते थती जे विशिष्ट शरीर अवस्था तेना ऊपर लक्ष्य जाइने मोहनीय ना कर्मना निमित्ते थतु, ये ना मोहनीय कर्म उसके साथ लेते हैं तो ही जीव को वो दुख रूप परिणति होती है। जे पीवानी इच्छा रूप दुख ते तृषा छे, हम तो डायरेक्ट कह देते ना साता से सुख होता है असाता से दुख होता है, नहीं, साता असाता के उदय में जो कुछ वहां बन रही बात, तो मोहनीय कर्म उसके साथ होगा तो ही वहां वो साता में सुख रूप और असाता में दुख रूप हो, क्योंकि उसका इष्ट अनिष्टपना मानता है, उसे इच्छा उत्पन्न होती, वो सब उसके साथ ले लेना। इसलिए जब हम कहते हैं असाता का उदय 14वें तक है, परंतु वहां मोहिनी कर्म है ही नहीं ना, दुख होने का सवाल ही नहीं है। तीसरा पॉइंट, श्रद्धा तृषा फिर भय लिया, आलोक नो भय। देखो सात प्रकार के भय होते मालूम है, इस लोक का भय, इस लोक संबंधी परलोक यानी अभी आगे मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा कहाँ जाऊंगा क्या होगा मेरा, ये परलोक संबंधी भय। अरक्षा भय यानी अपने कौन रक्षा करेगा, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, यानी मैं कहाँ छिप जाऊँ, मुझे कुछ ठिकाना नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, इस तरह से वो अगुप्ति भय, मरण भय, वो तो समझ में आवे ऐसा है, वेदना भय, अने अकस्मात भय, अरे कुछ नहीं हो जाए, सडनली कुछ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाए, कोई अन्य कोई चीज बन जाए, एम भय सात प्रकार छे। ये सात प्रकार के भय होते ना, समय दर्शन प्राप्त होते तो श्रद्धा अपेक्षा उसके भय निकल जाते, जितनी चारित्र में स्थिरता होगी वो चारित्र अपेक्षा भी वो निर्भय हो जाते। जैसे चौथे गुण स्थान वाला है, और गई जंगल में जाता है, कोई जानवर देखा तो वो भागेगा डर से, श्रद्धा की अपेक्षा उसके भय नहीं है। मुनिराज हो गए तो सामने से शेर भी आता होगा तो वो तो निर्भयता से वहाँ चलेंगे, आयुशेष होगी तो शेर अपना रास्ता बदल के चला जाएगा, और वो डर के कहीं छिप जाए कहीं भाग जाए ऐसा नहीं होगा। चौथा पॉइंट, रोष यानी क्रोध। क्रोधी पुरुष नो तीव्र परिणाम ते रोष छे। हम कहते हैं रुष्ट हो गया, यानी वो तो बहुत माइल्ड में हम रुष्ट शब्द आता है, मगर ये तीव्र में लिया उन्होंने भय। भय भय नाम का कर्म है ना, मोहनीय का ही है ना, इच्छा क्या हुई उसमें, भय के उदय में भय हुआ, परंतु उसमें इच्छा ये दुख है ना, छिपने की इच्छा हुई। हम उसमें वांछा में लेते ना संज्ञा में, भय के उदय में यहाँ छिपने की भागने की इच्छा होना, वो उसमें ले लिया उसमें, क्योंकि संज्ञा में इच्छाओं को लेते हैं, यहाँ तो केवल भय को लिया है। ये भय भय लगना है, भले वो बाहर में दिखाए नहीं दिखाए, जो भय है वो क्यों है, एक तो जीव ने अपने को शरीर रूप समझा है, समय दृष्टि को भय चला जाता है, भय नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, क्योंकि उसने अपने को मैं जीव हूँ समझ लिया, अनुभव भी कर लिया है। अब वो जीव से अजीव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि जीव ही उसको कहते हैं जिसको कभी मरण ही नहीं होता, वो तो हमेशा ही जीता आया है, जी रहा है और जीता रहेगा। अब ये देह नहीं तो दूसरा देह धारण करेगा, उसमें डरने की कुछ बात ही नहीं है ना, इसलिए उसको मरण का भी नहीं भय होता है, निशंक हो जाता है ना वो, तो बिल्कुल उसको प्रतीति ऐसी हो गई कि मैं तो हूँ, इससे भिन्न ही हूँ, भिन्न हूँ तो ये जुदा पड़ गया तो उसमें क्या है, मेरा कुछ नहीं चला जाने वाला, पूरी आम जनता आम दुनिया जो मरण के भय से इतनी जिसको कहीं थे कांसाविश जिसको कहेंगे मराठी में, यानी कांप उठते हैं मरण के नाम से भी, अपना तो बावजूद है किसी का मरण देखेंगे तो भी ऐसा ही हो जाता है उनका। ये सभी भयों में लगा लेना, तो जैसे हमने देखा ना समय दृष्टि के मद नहीं होते हैं, वैसे समय दृष्टि के भय भी नहीं होते। क्यों नहीं भय होते, क्योंकि उसके तो अपने को शरीर रूप समझा ही नहीं, उसने माना ही नहीं है, अपना जैसा स्वरूप है वैसा उसने मान लिया है। अब मेरे में से क्या कम हो जाने वाला है, ये शरीर छूटेगा तो अपने अनंत गुणों में से कितने गुण यहाँ रह जाएंगे, सब अपने अपने साथ ही है, क्योंकि द्रव्य में परिपूर्ण हूँ, हर समय हूँ। अब ये मनुष्य भाव छूट गया तो अन्य किसी पर्याय में जन्म लेगा, जो कोई आयु बंदी हो उसका ऐसा भी डर नहीं, अरे मैं नरक में जाऊँ तो क्या होगा, मैं तिरंज में जाऊँ तो क्या होगा, मैंने तो पहले बहुत पाप किया था अभी तो भले, ऐसा भी उसको विचार नहीं है। देखो चौथा पॉइंट हो गया ना क्रोध का। पांचवा, राग में राग प्रशस्त और अप्रशस्त दो है, राग प्रशस्त और अप्रशस्त हो छे। दान शील उपवास तथा गुरुजनों की वैयावृत्य वगैरह में उत्पन्न थतो ते प्रशस्त राग छे। प्रशस्त है शुभ राग, वो प्रशस्त है अशुभ राग। कर्मों में भी शब्द लगते हैं ये प्रशस्त और अप्रशस्त कर्म, प्रकृतियां प्रशस्त कर्म प्रकृतियां अप्रशस्त कर्म प्रकृतियां, राग में भी प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। तो ये दया दान शील उपवास वगैरह जो है वो क्या है, प्रशस्त राग दोष है। हाँ ये दोषों की बात चल रही है। हम दोषों में अच्छा बुरा करते फिर। અને સ્ત્રી સંબંધી, રાજા સંબંધી, ચોર સંબંધી તથા ભોજન સંબંધી વિકથા કહેવાના ને સાંભળવાના કૌતૂહલ પરિણામ તે અપ્રશસ્ત રાગ છે. અભી ઉસમે ઉસ સમય તો કહેવાના ઓર સાંભળવાના હતા, અભી ઉસમે દેખવાના ભી જોડ દો. હા, વો ક્યા દેખતે, ઉસમે ક્યા દેખ રહે હમ, યહી તો દેખતે ના, સ્ત્રી સંબંધી, રાજા સંબંધી, ચોર સંબંધી, ભોજન સંબંધી વિકથા. ઓર ભી ક્યા હૈ, કોઈ હિંસા હૈ, નફરત હૈ, ઓર ક્યા ક્યા ચલતા રહેતા હૈ, તો વો ક્યા હૈ, અપ્રશસ્ત રાગ છે. છઠ્ઠા નંબર, મોહ કી બાત હૈ. ચાર પ્રકારના શ્રમણ સંઘ પ્રત્યે વાત્સલ્ય સંબંધી મોહ તે પ્રશસ્ત. અચ્છા, મોહ મે ભી પ્રશસ્ત અપ્રશસ્ત ગયા ઉન્હોને. દેખો એ ક્યા કહેતે હૈ, ચાર પ્રકાર કે શ્રમણ સંઘ, ઉસકે નીચે ફૂટનોટ માં દે, શ્રમણના ચાર પ્રકાર આ પ્રકારે છે. ઋષિ, મુનિ, યતિ અને અણગાર, ઉસકા અર્થ બતા રહે. રિદ્ધિવાળા શ્રમણ તે ઋષિ છે. શ્રમણ સમજતે, મુનિ, મુનિઓં કો શ્રમણ કહેતે. તો રિદ્ધિવાળા શ્રમણ તે ઋષિ છે. મુનિ અવધિ જ્ઞાન, મનપરે જ્ઞાન અથવા કેવળ જ્ઞાન વાળા શ્રમણ તે મુનિ છે. હા, અભી ઉસમે કેવળ જ્ઞાની ભી આ ગઈ ને, મુનિ, હૈયર વગેરે એસા કુછ નહીં, બસ. યતિ, એ સભી મુનિરાજ હી હૈ, એ કેવળ ઉસકે અપેક્ષાવશ ઉસમે ભેદ કર દીએ. બેસિકલી વો સારે મુનિ હૈ ને. ઉપશમક અથવા ક્ષપક શ્રેણીમાં આરૂઢ શ્રમણ તે યતિ છે, અને સામાન્ય સાધુ તે અણગાર છે. આ પ્રમાણે ચાર પ્રકારનો શ્રમણ સંઘ છે. અબ ઉસકે લીએ ક્યા કહેતે, ઉપર દેખો, ચાર પ્રકારના શ્રમણ સંઘ પ્રત્યે વાત્સલ્ય સંબંધી મોહ તે પ્રશસ્ત છે, અને તે સિવાયનો મોહ અપ્રશસ્ત જ છે. અભી બાકી પૈસે સંબંધી, સ્ત્રી પુત્ર સંબંધી સબ લે લેના ઉસમે. હા, વો તો હા, ચતુર્વિધ સંઘ કહેતે ઉસકો. ઓર યે શ્રમણ સંઘ હી ચાર પ્રકાર કે લિયે, મુનિયો મે હી ચાર પ્રકાર કે, ઓર વો સબકે મિલકર, શ્રાવક, શ્રાવિકા ઓર મુનિ આર્ય કા, સબ મિલકર ચતુર્વિધ સંઘ કહેતે હૈ, વો અલગ બાત હૈ. આર્ય કા, વો તો આપ ઉસકો આદત હૈ ના વહાં બોલને કી. પણ સાધ્વી, સાધુ અને સાધ્વી ઇસ તરહ સે વો સામાન્ય સામાન્ય શબ્દ હૈ. સાધ્વી કો કહા, સાધ્વી તો પાંચવી સ્થાન વાલે. અભી જાને દો ના ઉસકો, એને યહાં સાધ્વી કહો તો ઉસમે કુછ યે દોષ નહીં હૈ. સારિકા કો ભી સાધ્વી કહેતે હૈ, પરંતુ ઉનકે તો પહેલે વો સાધ્વી કહેને સે ઉનકી આંખો કે સામને કોઈ અલગ આતી હૈ બાત. આર્યિકા જો હૈ ઉનકો યહાં લે લેના ચતુર. ઠીક હૈ,
દેખો શ્વેતાંબર માન્યતાઓ મેં આપને જૈસા બતાયા મહાસતી સાત્વિક ગુણસ્થાન વાલી હૈ. અરે કેવલ જ્ઞાની ભી હોતી હૈ,
ઉનમે તો સ્ત્રી કો મોક્ષ ભી મત હૈ,
ઉસકો ક્યા દેખને કા હૈ. વો તો પાંચવે ગુણસ્થાન કે ઉપર કોઈ જા હી નહીં સકતા હૈ.
અભી જાને દો, અભી તુમારે ક્યાં. ઉસકે બારે મેં કોઈ નિર્ણય હૈ, સ્ત્રી પર્યાય મેં કિસી કો કેવલ જ્ઞાન હો સકતા હૈ, પાંચવે ગુણસ્થાન તક હી જા સકતી હૈ, ક્યોંકિ સ્ત્રીયા જો કર્મભૂમિ કે ઉસકે નીચે કે હી સહનન હોતે તીન, ઓર સ્ત્રીઓ કો ભલે તીન સહનન કે સાથ સાતવે ગુણસ્થાન તક તો હમને દેખી ઉદય વિચ્છિત્તિ હોતી હૈ, પણ વો તો પુરુષો મેં. द्रव्य से जो स्त्री है उस पांचवें गुणस्थान के ऊपर उनका पुरुषार्थ ही नहीं होता, ये नक्की है। वो भाव से स्त्री हो तो मोक्ष भी जा सकती है, वो बात अलग है, वो तो हम सुबह पढ़ रहे हैं ना, आपको तो पता है। परंतु यहाँ बात क्या हो रही थी, हाँ श्रमण संघ बता रहे, और वहाँ तो हम चतुर्विध संघ जो कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जैनी जो है वो चतुर्विध संघ होता है उनका, इस तरह से। ये प्रशस्त मोह और अप्रशस्त मोह दो भेद किए उन्होंने। बताए ना वो इन्हें मुनि संघ प्रत्यय वात्सल्य, जैसे मुनि का वैयावृत्य के परिणाम होना, उनके आहार दान आदि के परिणाम होना, उन संबंधी जो कुछ उस वात्सल्य में ले लेंगे उसको, वो प्रशस्त मोह। अब आगे चिंता जिसको कहा, धर्म रूप तथा शुक्ल रूप चिंतन, चिंतन है चिंता विचार, प्रशस्त छे। देखो चिंता नहीं, वो हम बहुत किसी के बारे में चिंता करते रहते, टेंशन, वो वाली चिंता नहीं लिया, जिसको चिंतन के रूप में लिया, जिसको हम धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान वगैरह कहते हैं ना, उसकी बात है। यानी जो शुभराग रूप है प्रशस्त है, ते सिवाय नु आर्त रूप तथा रौद्र रूप चिंतन अप्रशस्त छे। यानी जिसको हम ध्यान के भेद बताए, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान और यहाँ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, यानी अप्रशस्त चिंतन और वहाँ प्रशस्त चिंतन। देखो जब तक चिंतन रूप है तब तक वो बंध का ही कारण है भले प्रशस्त, पर तो अरिहंतों को ये भी नहीं है कोई विकल्प, रही तो हो गए ना सब। हाँ तीर्यंचो तथा मनुष्य, अरिहंत को शुक्ल ध्यान उपचार से बताया जाता है, वो ध्यान यानी को अन्य चीजों से उपयोग हटाकर एक चीज पर केंद्रित करना, वो वाला ध्यान वहां नहीं है। क्यों नहीं है? वहां तो पूरे ही सारे द्रव्य उनके उपयोग रूप में है ना, आपके लिए वो यहाँ से उपयोग हटाओ और यहाँ लगाओ, ये आपके लिए हमारे लिए है, उनके लिए क्या है, सब उपयोग रूप में है, कहीं से हटाना कहीं लगाना ये हो ही नहीं सकता उनके लिए। फिर भी वहाँ ध्यान क्यों कहा? क्योंकि ध्यान का फल निर्जरा होता है और वहाँ तो असंख्यात गुना निर्जरा चल रही है। वो केवल ज्ञान तो ध्यान का फल है, केवल ज्ञान जो हुआ है वो ध्यान के फल में हुआ है, अभी उनके कोई ऐसा ध्यान नहीं है जो छद्मस्थों के होता है ऐसा। ये बात आ गई, अपने पहले पढ़ी हुई है कि भूल गए? देखो ध्यान किसको कहे ना, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, एक ही विषय पर ध्यान अपना ज्ञान केंद्रित करना। अभी वो कौन से विषय पर केंद्रित करेंगे? अरे सभी विषय उनके तो उपयोग रूप ज्ञान में है, वो कहेंगे नहीं नहीं इसके ऊपर से हटा देंगे तो केवल ज्ञान नहीं रहेगा। मेरी भाषा में ये फैसिलिटी हमारे में है, कौन सी फैसिलिटी, क्या कहते हम? अरे उधर मत देखो, बस इधर देखो। हम कहते ना बच्चों को कोई चीज देख देख कर होता है, अरे उधर मत देखो, यानी उपयोग वहां मत लगाओ, वहां से हटा लो इधर लगा लो। कोई बहुत चीज दुखते हैं तो हम कहते ना अरे उधर ध्यान ही मत दो, दूसरी तरफ देखो। हम मेडिकल में थे ना, तभी वो ओरल एनेस्थेसिया कहते, जैसे कोई छोटा मोटा कट करना है, कुछ करना है, ड्रेसिंग करना है, कोई छोटा ऑपरेशन भी करना है, तो बताते थे जोर से दबाओ, ये जोर से ऐसा दबाओ इसे, तो उपयोग कहाँ लगता है? इधर लगता है। तो बाय दैट टाइम कुछ कर लिया तो पता नहीं चलता उसको, यानी हम उपयोग दूसरी जगह लगाते हैं ना, ये बात है। वैसा ध्यान केवली को नहीं है। आठ नंबर, तीर्यंचो तथा मनुष्यों ने वयकृत देह विकार, क्या शब्द है, यानी वय ने लीधे थती शरीर की जीर्ण अवस्था, उम्र के कारण, उम्र बढ़ गई है ना, तो शरीर की अवस्था भी बदल जाएगी। जैसे हम बच्चे थे फिर युवा हो गए, अब बूढ़े हो गए हम, तो शरीर की अवस्था कितनी पलट गई है ना। तेज जरा छे, यानी वो शरीर की जो वृद्धा, शरीर की जो अवस्था है वो जीव से जुदा ही है, परंतु केवली के वो भी नहीं होगी। वात पित्त ने कफनी विषमता थी उत्पन्न थती कलेवर संबंधी पीड़ा, एक कलेवर है फिर शरीर ही है, हम तो कलेवर उसको कहते हैं मृत कलेवर है, वो तो जीव निकल गया तो कहेंगे कलेवर पड़ा है, यहाँ पर अभी भी कलेवर ही है। तेज रोग छे, यानी वो तो तीन जो होते हैं ना वात पित्त और कफ, तो उसका बैलेंस रह जाए तो निरोगी अवस्था रहती है, और उसका बैलेंस बिगड़ तो रोग होता है। सादी सनिधन मूर्त इंद्रियों वाला विजातीय नरनारकादि विभाव व्यंजन पर्यायनो जे विनाश तेनेज मृत्यु कहवामां आव्युं छे। देखो देखो विभाव व्यंजन पर्याय के लिए विशेषण बता दिए, विभाव व्यंजन पर्याय समझते पहले, अभी हमने पंचाशिकाय में पढ़ा था विभाव व्यंजन पर्याय को पर्याय कहा था वहां पर, और मति ज्ञानादि जो पर्याय उसको तो गुण कहा था वहां पर, आपको याद होगा तो। तो विभाव व्यंजन पर्याय किसको कहा, मनुष्य तिर्यंच नारकी नर नारकादि जिसको कहा, हाँ प्रदेशत्व गुण की विभाव, परंतु वो एक समय वाली नहीं, वो चिरकाल वाली, वो असमान जातीय द्रव्य पर्याय जिसको कहेंगे, वो विभाव व्यंजन पर्याय। वो कैसी है, सादी है और सनिधन है। हम कैसे है, हम अनादि अनिधन है, और ये कैसी है पर्याय, सादी और सनिधन है, उसको बिगिनिंग भी है और अंत भी है। हम कहते हैं ये जन्मा मनुष्य और ये मर गया। और कैसी है विभाव व्यंजन पर्याय, मूर्त इंद्रियों वाले और विजातीय छे, अलग जाति वाली छे। नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय नो जे विनाश तेने ज मृत्यु कहवामां आव्युं छे। मनुष्य मर गया, अभी वो देव में उत्पन्न हुआ, अभी वो देव कहलाएगा, मनुष्यपने से उसका विनाश हुआ, देवपने से उत्पाद हुआ। उत्पाद वे में वहां हमको समझाया था पंचाशिकाय में, इसी का उदाहरण दिया था। तो वो मरण स्वेद अशुभ कर्मना विपाक थी जनित शारीरिक श्रम थी उत्पन्न थतो जे दुर्गंधना संबंध ने लीधे खराब वास वाला जलबिंदुओनो समूह ते स्वेद छे। अब खेद, अनिष्ट नी प्राप्ति अर्थात कोई वस्तु अनिष्ट लागवी ते खेद छे। यहाँ खेद का अर्थ अलग किया, यानी वस्तु अनिष्ट लगना ये खेद। फिर मद, सर्व जनताना એટલે જન સમાજના કર્ણમાં અમૃત રેડતા સહજ ચતુર કવિત્વને લીધે, સહજ સુંદર શરીરને લીધે, સહજ ઉત્તમ કુળને લીધે, સહજ બળને લીધે તથા સહજ ઐશ્વરને લીધે આત્મામાં જે અહંકારની ઉત્પત્તિ તે મદ છે। ક્યાં કહા મદ, કિસકો કહા, અપને કો મહાન માન રહા હૈ, गर्व, गर्व जिसको कहेंगे ना, वो गर्व यानी बुरे अर्थ में मद, मद हो गया उसको। किसके किसके कारण हुआ, किसी के कवित्व है, एकदम शीघ्र कवि है, कोई भी विषय पर कवि करता है तो उसके अपने को बहुत महान समझता है, मद हो जाता है उसको। या किसी के शरीर है, सुंदर शरीर है तो मैं बहुत सुंदर हूँ, उत्तम कुल के कारण अपने को महान मानता है। कोई जो बलवान है शरीर का, शारीरिक बल के कारण अपने को बलवान मानकर उसको मद हो जाता है। और ऐश्वर्य, सहज सहज शब्द ले ला, वो तो उसके कारण नहीं हुआ है, वो तो भले, हाँ क्या क्या है,
आपने वो संस्कृत कहते थे कि वो आगे छोड़ दिया क्या,
कौन सा वो 99 पेज पर होते, 99 पेज पर विभाव व्यंजन पर्याय 10वां नंबर का पॉइंट था, 11वें में हमने स्वेद देखा, 12वें में खेद देखा, अभी 13वें में अभी हम मद की बात देख रहे हैं, अभी 102 पेज सॉरी हाँ, अभी 100 नंबर के पेज पर आ गए हम, 100 यानी जो बाह्य चीज के कारण स्वयं वो अपने को महान मानता है, अपना मान कषाय पुष्ट करता है, वो मद हो जाता है उसको। 14वां नंबर रति, मनोज्ञ यानी मनपसंद वस्तुओं में परम प्रीति तेज रति छे। और 20वां परम समरसी भावनी, भावना रहित जीवों ने, यानी जिसका आत्मा का अनुभव नहीं है उसी को अर्थ क्या करते हैं वहां पर, परम समता भावना अनुभव रही जीवों ने, क्यारेक पूर्वे नहीं जोयेलू जोवाने लीधे थतो भाव ते विस्मय छे, आश्चर्य लगता है उसको किसी भी चीज में, हा 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 क्या हुआ है? तो उसको उसमें विस्मय लगता है, कोई हीरा देखा, कोई बहुत अच्छी बात देखी, वो विस्मय। अब केवली को विस्मय लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ देखा नहीं जाना नहीं, ऐसी कोई चीज ही नहीं है उनके, केवल शुभ कर्म थी, देव पर्याय में जे उत्पत्ति, केवल अशुभ कर्म थी, नारक पर्याय में जे उत्पत्ति, माया थी तिर्यंच पर्याय में जे उत्पत्ति, अने शुभाशुभ मिश्र कर्म थी मनुष्य पर्याय में जे उत्पत्ति ते जन्म छे। जन्म किसको कहना, ये अन्य पर्याय में उत्पत्ति होना उसको जन्म कहा। निद्रा दर्शनावरणीय कर्मना उदय थी जेमा ज्ञान ज्योति अस्त थी जाए, क्योंकि बाह्य के ज्ञान हमारा मंद हो जाता है, तेज निद्रा छे। निद्रा क्या है हमने देखा ना, हम सुबह की सीख रहे हैं ना, निद्रा कितने प्रकार की है, बहुत अच्छा, पांच प्रकार की, उत्थान वृद्धि निद्रा, निद्रा प्रचला, प्रचला निद्रा और प्रचला, अलग अलग उसके जो ग्रेडेशन हमने देखे थे वो सारी उसको निद्रा कहेंगे, वो सारे दर्शनावरण कर्म है उस नाम के और यहाँ जीव के जो भाव है, जीव का जो, उसको यहाँ निद्रा कहते हैं। इष्टना वियोग मां विकल भाव, यहाँ घबराट लिया, तेज उद्वेग छे। आ 18 महादोषों थी त्रण लोक व्याप्त छे, यानी सभी जीवों में ऐसे ये दोष पाए जाते हैं, वितराग सर्वज्ञ आ दोषों थी विमुक्त छे। वितराग सर्वज्ञ ने द्रव्य भाव घाती कर्मों नो अभाव होती, क्या कहते हैं, द्रव्य घाती कर्म और भाव घाती कर्म। द्रव्य कर्म तो समझते हैं, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोहनी और अंतराय है, ये द्रव्य घाती कर्म हुआ। भाव घाती कर्म जीव के जो परिणाम है वो भाव घाती कर्म है, उन कर्मों के उदय में जीव के अपने परिणाम है ना, जीव अपने हीन भाव रूप परिणाम में हो रहा है, कषाय रूप परिणाम में हो रहा है, ये अंतराय के उदय में जो हीन वीर्य रूप परिणाम में रहा, ये तो जीव के अपने भाव है, उसको भाव घाती कर्म कहेंगे। उसका अभाव हुआ थी तेमने भय रोष राग मोह शुभाशुभ चिंता खेद मद रति विस्मय निद्रा तथा उद्वेग क्या थी होए, ख्याल में याद बात, यानी कौन से कर्मों के उदय में क्या क्या होता है उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। कौन कौन से दोष गए उनके, देखो भय रोष राग मोह शुभाशुभ चिंता, चिंता में दोनों प्रकार लिए, खेद मद रति विस्मय निद्रा उद्वेग, 11 हो गए ना, 11 हो गए। वही अभी साता साता की बात करेंगे, 12 हो गए, भय रोष राग 3, मोह शुभाशुभ चिंता 5 नंबर, खेत 6 मद 7 रति 8 विस्मय 9 निद्रा 10 उद्वेग 11। शुभ अशुभ अलग नहीं लेना, चिंता चिंता एक लेना है। वड़ी तेमने, तेमने इतले अरहंत ने समुद्र जेटला शातावेदनीय कर्मोदय मध्य बिंदु जेटलो अशातावेदनीय कर्मोदय वर्ते छे, ख्याल में आई बात, है उदय उनका, परंतु तो उसके सामने बिंदु जैसा ते मोहिनी कर्मणा तद्दन अभावमा। एक तो उसके सामने कुछ नहीं है और दूसरी बात मोहिनी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साता और असाता का फल तो मोहिनी के उदय वाले को मिलता है। लेश मात्र पण क्षुधा के तृषानो निमित्त क्या थी थाय न ज थाय। कारण के गमे तेटलो अशाता वेदनीय कर्म होय तो पण मोहिनी कर्मना अभाव में दुखनी लागणी होई शके नहीं। तो पछी अहीं तो जा अनंत गुणा शाता वेदनीय कर्म मध्य अल्पमात्र अविद्यमान जेवू लिखा है ना। देखो हमने देखा था ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में अशुभ कर्मों का अनुभाग अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा घटता चला जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है। तो है उदय परंतु नहीं के बराबर है। तो कहते अनंत गुणा शाता वेदनीय कर्म मध्य अल्पमात्र अशाता वेदनीय कर्म वर्ते छे त्या क्षुधा तृषा की लागणी क्यांती होय। क्षुधा तृषाना सद्भाव में अनंत सुख अनंत वीर्य वगैरह क्यांती संभव है। यहाँ अनंत सुखी कहते और उसको तो क्षुधा लगी है तृषा लगी है आहार ले रहे कह रहे वो बात नहीं हो सकती। आम वितराग सर्वज्ञ ने क्षुधा तथा तृषा नहीं हुआ थी तेमने कवलाहार पण होतो नथी। कवलाहार विना पण तेमने अन्य मनुष्यों ने असंभवित एवा सुगंधित सुरसवाला सप्त धातु रहित परम औदारिक शरीर रूप नो कर्म आहार ने योग्य। ये नो कर्म आहार क्या होता है मालूम है? देखो हम आहार का नाहार कहते हैं ना, यानी शरीर के परमाणु हर समय ले रहे। हमने देखा योग के कारण शरीर नाम कर्म के उदय में उनके भी औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, तो वो भी औदारिक शरीर के परमाणु वाणी के परमाणु मन के परमाणु ले रहे हैं और उसके शरीर रूप से ढलना चल रहा है। तो ये उसको हम नो कर्म आहार कहेंगे। ये कवलाहार है ना, मुंह से जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको कवलाहार कहते हैं। ये मनुष्य 3 इंच जो मुंह से खाते वो कवलाहार है और उनके कैसा है ये नो कर्म आहार सब जीवों को है। हमने कहा ना शरीर ग्रहण करने के पहले समय से लेकर मरण के समय तक हर जीव वो आहारक है, नो कर्म का आहार ग्रहण कर रहा है। भले उन्हें 10 दिन क्या एक एक महीना दो दो महीने के उपवास भी किए तो भी ये नौकर्म आहार चल रहा है हर समय। उसके योग्य सूक्ष्म पुद्गलो प्रतिक्षण आवे छे हर समय, क्योंकि जब तक औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है तो उसके परमाणु हर समय ग्रहण करने का कार्य चल ही रहा है अने तेथी शरीर स्थिति रहे छे। अब यही रुकेंगे हम।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नं सदा देत हो।